अब पारे का निसफ है जिसके ऊपर बात शुरू हुई थी सूरत की, उसी के ऊपर अब बीच में बात आ गई। क्या ए लोगों जो ईमान लाए हो, मुशरिकीन नापाक हैं, लिहाजा इस साल के बाद ये मस्जिद हराम के करीब ना फटके, और अगर तुम्हें तंग दस्ती का खौफ है तो वईद नहीं कि अल्लाह चाहे तो तुम्हें अपने फजल से गनी कर दे, अल्लाह अलीम और हकीम है। मक्का वालों को खौफ आ गया कि अगर अगले साल से मुशरिकीन काबा में नहीं आएंगे तो हज में बहुत थोड़े लोग आएंगे। तो जो हमारी दुकानें चलती थी, क्योंकि हज जो था उनके लिए एक तिजारती मंडी भी थी, पूरे साल का राशन जमा कर लेते थे। ऐलान हो गया कि इस साल के बाद मुशरिकीन ने नहीं आना, तो एक फितरी सा खौफ आ गया कुछ लोगों के दिलों में कि अच्छा फिर जब कम लोग आएंगे कम चीज़ें बिकेंगी, सीजन नहीं लगेगा। अल्लाह कहते हैं छोड़ दो, आज जाके देखिए सबको अल्लाह लेकर जाया हज और उमरे पे, जाके एहसास होता है थोड़े लोग हैं। कितनी तिजारत, एक काफिर नहीं, इसमें अमल की बात है। अल्लाह के लिए हराम को छोड़ दो, मत सोचो कि ये हराम चीज कारोबार से निकाल दी तो मेरी तिजारत नहीं चलेगी। तुम देखना थोड़े में अल्लाह ज्यादा बरकत डाल देगा। जंग करो अहले किताब में से इन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान नहीं लाते, और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है इसे हराम नहीं करार देते, और दीने हक को अपना दीन नहीं बनाते। इनसे लड़ो यहाँ तक कि वो अपने हाथ से जिज्या दें और छोटे बनकर रहें। यहूदी कहते हैं उजैर अल्लाह का बेटा है, और ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। ये बेहकीकत बातें हैं जो अपनी बातों से निकालते हैं। इन लोगों की देखा देखी जो इनसे पहले कुफर में मुब्तला हुए, अल्लाह की मार इन पर, ये कहाँ से धोखा खाए जाते हैं। अल्लाह ताला बचा के रखे। वमा उमीरु इल्ला लियाबुदुल्लाह इलाहं वाहिद। इन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना रखा है। इसी तरह मसीह ने मरियम को भी, हालांकि इनको एक माबूद के सिवा किसी की बंदगी करने का हुक्म न दिया गया था, वो जिसके सिवा कोई मुस्तहिक की इबादत नहीं, पाक है वो इन मुशरिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह की रोशनी को अपनी फूकों से बुझा दें, मगर अल्लाह अपनी रोशनी मुकम्मल किए बगैर मानने वाला नहीं, ख्वाह काफिरों को ये कितना ही नागवार हो। वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीने हक के साथ भेजा ताकि इसे पूरी जिन से दीन पर गालिब कर दे, ख्वाह ये बात मुशरिकों को कितना ही नागवार हो। खूबसूरत आयत है, बेहतरीन आयत है इसमें, जिसमें आपको मुझे एक पैगाम मिला, और वो क्या है कि अल्लाह अपने इस दीन को पूरा करेगा। वो एक शेर भी आपने सुना होगा ना कि नूरे खुदा है कुफर की हालत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। हर दौर में इस्लाम पे बातें हुई, याद रखिए इस्लाम पे लोगों ने इल्जाम दिए लेकिन अल्लाह सुबहान तआला ने उसको पीछे कर दिया। आज कुछ ये फूकें ज्यादा बड़ी दिखती हैं, पहले मक्का की मंडियों में बाजारों में खड़े होकर इस्लाम पे बात करते थे, उसी मोहल्ले में बात खत्म हो जाती थी, आज एक आवाज लगती है पूरे ग्लोब पे फैल जाती है। करना क्या है, मैंने आपने हम मुसलमानों ने शम्मा की, इस दीन के चिराग की हिफाजत करनी है। इमेजिनेशन में लाइए, एक शख्स है वो जलती हुई शम्मा पकड़ के खड़ा है, सबसे ज्यादा उस शम्मा से किसको खतरा है, जिसके हाथ में, आप देखिए कि अगर कैंडल है ये मेरे हाथ में जल रही है, आप सब दूर है, इस वक्त मेरे हाथ में एक फूक मारूंगी, मेरी फूक से ये बुझेगी, आपकी फूकों से नहीं बुझेगी। लिखिए जुमला, आज के दौर में इस्लाम की शम्मा को सबसे ज्यादा मुसलमान से खतरा। काफिरों की फूकें बहुत बाद में आती हैं, वो तो पहुंचती नहीं है। अगर हम मुसलमान इस दीन की हिफाजत करते, दीन की शम्मा को रोशन करने वाले रहते, तो यकीन करें कि कोई इस पे कुछ नहीं करेगा, ये प्रोपेगंडे सब खत्म हो जाएगा। हाँ, इन फूकों से एक बहुत फायदा होता है, बीमार ईमान वाले मुसलमान झड़ जाते हैं, वो जो नाम का इस्लाम होता है वो भी खत्म हो जाता है। आज कुरान पे तनकीद, इस्लाम पे बातें, नबी पे इल्जाम, लेकिन याद रखिए काफिरों से ज्यादा, गैर मुस्लिमों से ज्यादा मुसलमान इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप और मैं वो काम कर लें जिसका अल्लाह ने आपको मुझे हुक्म दिया है, आप देखेंगे इंशाल्लाह फायदा होगा, और कोई बाल कभी का इस दीन का नहीं करेगा। ये अल्लाह का दीन है, ये 1400 साल से पनप रहा है, ये चलता रहेगा। अल्लाह मोहताज नहीं है मुसलमानों का, वो खुद हिफाजत कर सकता है। उसने अबाबीलों से अपने घर की हिफाजत करवाई, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कराई। सिर्फ आज बात यह है कि मुझे आपको इस्लाम को अपना जाती दीन समझने की जरूरत है। जब तक इस्लाम को अपना जाती काम नहीं समझेंगे, इस्लाम मेरा न्यू बॉर्न बेबी है, किसी हालात में नहीं छोड़ना, मैं ही इसको संभालूंगी। बच्चा बीमार हो और माँ नफिल पढ़ती रहे, बच्चे को चोट लग गई और माँ कहती है जरा जाकर मैं वहां 4 सफ़े पढ़ूं, बेवकूफी की बात है। इस वक्त मुझे आपको इस इस्लाम का खूबसूरत रूप लोगों को दिखाना पड़ेगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे इससे फायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इसमें शामिल कर ले। ये दीन गालिब होके रहेगा, लियुस्खिरहुल्लदीन कुल्ली, आपका लाया हुआ दीन सिर्फ खुल्फाए राशिदीन के दौर में ही नाफिज क्यों हुआ, आज क्यों नहीं हो रहा? आप देखिए, एक दफा ये साबित हो चुका, पूरी दुनिया में दीन अपना गलबा दिखा चुका, ये इस बात की दलील है कि इंशाल्लाह ये आगे आके भी कामयाब होगा। आप कहते हैं कि जब पहली फ्लाइट बनाई थी राइट ब्रदर्स ने, वाइट या राइट ब्रदर्स ने, सिर्फ 6 मिनट वो फ्लाइट उड़ी थी और फिर वो जहाज गिर के तबाह हो गया था, लेकिन लोगों को क्ल्यू मिल गया कि दैट मीन के जहाज उड़ सकते हैं। आज आप देखिए मिलियंस जहाज होंगे दुनिया में, बिल्कुल इस्लाम का जहाज उड़ा था, आज दबा हुआ है। क्यों? कि आज वो हाईवेज नहीं है, आज वो रनवेज नहीं है। आपको मुझे इसमें अपना काम डालना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل। ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन अहले किताब के अक्सर उलमा और दरवेशों का हाल ये है कि वो लोगों के माल बातिल तरीकों से खाते हैं और इन्हें अल्लाह की राह से रोकते हैं। दर्दनाक सजा की खुशखबरी दो इनको जो सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं और इन्हें खुदा की राह में खर्च नहीं करते। एक दिन आएगा इसी सोने चांदी पर जहन्नुम की आग दिखाई जाएगी और फिर इसी से इन लोगों की पेशानी और पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। और साथ ही क्या कहा जाएगा? ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, लो अब अपनी समेटी हुई दौलत का मजा चखो। यहाँ आप देखिए कि माल को जमा करने की बात है। हर वो माल जिस पर ज़कात ना दी जाए उसको कंज कहते हैं, और ऐसा माल क़यामत के दिन एक सांप की सूरत में एक इंसान की गले में लिपटेगा और उसकी ये जो मुंह का ये बाछी होती है इसको चीरेगा। इसलिए हमेशा हम सबको अपनी फिक्र रखनी चाहिए इस बात की कि हमने अपनी ज़कात अदा की है कि नहीं। आगे इंशाल्लाह ज़कात का नसाब भी आएगा, वहाँ हम देखेंगे, लेकिन ये जहन में रखिए कि 100 पैसे सिर्फ 2.5% जो अल्लाह ताला ने ज़कात का रखा, अगर वो एक इंसान खुशी से नहीं दे पा रहा तो उससे बाकी चीज़ों की क्या उम्मीद रखी जाएगी। दूसरी, यहाँ मजहबी तबके पर भी तनकीद थी कि अगर लोगों से वो अल्लाह के नाम पर कुछ माल जमा करते हैं तो फिर उसको सही जगहों पर लगाना चाहिए, ना कि उसको अपनी मनपसंद की जगहों पर इस्तेमाल किया जाए। आगे देखते हैं, कुछ महीनों की बात है। इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरा, हकीकत यह है कि महीनों की तादाद जब से अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया अल्लाह के लिखे हुए के मुताबिक 12 ही है। हमारे भी जहनों में ये सवाल आता है ना कि सबसे पहले किसने ये 12 महीने बनाए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि शुरू से महीने 12 ही हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन भी सिखाई गई, इनमें से 4 महीने हुरमत वाले हैं, ठीक यही जाब्ता है, बस इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म न करो और मुशरिकों से सब मिलकर लड़ो जिस तरह वो सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह मुत्तकियों ही के साथ है। नसी तो कुफर में एक मजीद काफिराना हरकत है जिससे ये काफिर लोग गुमराही में मुबतला किए जाते हैं। किसी साल एक महीने को हलाल कर लेते हैं और किसी साल इसको हराम कर देते हैं ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की तादाद पूरी भी कर दें और अल्लाह का हराम किया हुआ हलाल भी कर लें। इनके बुरे आमाल इनके लिए खुशनुमा बना दिए गए और अल्लाह मुनकरीन हक को हिदायत नहीं देता। अब यहाँ से आगे आयत 38 से सूरत के अंत तक तबुक का सफर है। कह लीजिए कि ये गलबा इस्लाम की वो कोशिशें जब इस्लाम को अरब की सरजमीन से बाहर लेकर जा रही थी। थोड़ा सा पढ़ते हैं, आपको मुझे सिर्फ इन आयतों को पढ़ते वक्त तसव्वुर की आंख से खुद को उसी जगह पे महसूस करना है जहां ये आयतें नाजिल हो रही थी, और साथ ही साथ मुहासबा इस बात पे कि आज के दौर में हमारा ऐसे वक्त में जो कि यहां पेश किया गया रद्द अमल क्या होता है। आइए देखते हैं। या अय्युहल लज़ीना आमनु मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि साक़ल्तुम इलल अर्दी। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान वाले, अल्लाह में ईमान की नस्बत से पुकारते हैं, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे अल्लाह की राह में निकलने के लिए कहा गया तो तुम जमीन से चिमट कर रह गए? क्या तुमने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया? ऐसा है तो तुम्हें मालूम हो कि दुनिया की जिंदगी का ये सब सरो सामान आखिरत में बहुत थोड़ा निकलेगा। यानी जिस दुनिया को बनाने संवारने के लिए तुम न निकले, आखरत में उस दुनिया के खाते से भी कुछ ज्यादा नहीं निकलना। तुम न उठोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सजा देगा। किस सूरत में? मुख्तलिफ सूरतों में। वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तदुर्रुहु शैया, और तुम्हारी जगह किसी और गिरोह को उठाएगा और तुम अल्लाह का कुछ भी न बिगाड़ सकोगे। वो हर चीज पर कुदरत रखता है। तुमने अगर नबी की मदद ना की तो कुछ परवाह नहीं, अल्लाह उसकी मदद उस वक्त कर चुका है जब काफिरों ने इसे निकाल दिया था, जब वो सिर्फ दो में का दूसरा था, यानी एक नबी सल्लम और दूसरे अबू बकर सिद्दीक, जब वो दोनों गार में थे, जब वो अपने साथी से कह रहा था कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। इस वक्त अल्लाह ने इस पर अपनी तरफ से सकून कल्ब नाजिल किया और इसकी मदद ऐसे लश्करों से की जो तुमको नजर न आते थे, और काफिरों का बोल नीचा कर दिया, और अल्लाह का बोल तो ऊंचा ही है। अल्लाह जबरदस्त और दाना और बीना है। दोबारा फिर तसल्ली दी गई, दोबारा फिर यकीन दिलाया गया, किस बात का? इन फिरूखी फाफम वसिकाला, निकलो। आप एक एक लफ्ज को दिल के ऊपर रखें, निकलो, ख्वाह हल्के हो या बोझल, यानी सूटेबल है कि नहीं, आसान है कि मुश्किल, फायदा नजर आता है कि नहीं, करीब है कि दूर, निकलो और मेहनत करो और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों और अपनी जानों के साथ। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। मत ज्यादा सोचो, निकल पड़ो। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला खफा हो रहे हैं, डांट पिला रहे हैं। जमीनी ख्वाहिशात तुम्हें जमीन के तकाजों की तरफ ले गई, छोड़ जाने वाली चीजों की फिक्र की बजाय साथ ले जाने वाली चीजों की फिक्र करो। अल्लाह की तरफ चलो इससे पहले कि वो तुम्हें ले जाए। अल्लाह को प्यारे हो जाओ इससे पहले कि तुम अल्लाह को वाकई प्यारे कर दिए जाओ। अल्लाह तुम्हारा मुख्ताज नहीं है, तुम उसके मुख्ताज हो। क्या आज भी कोई ऐसी तबूक है? क्या आज भी गैर मुस्लिमों के कुछ ऐसे हमले हैं इस्लाम पर? और अगर है तो फिर कोई हमारा जवाब सुने, कोई हमारा सोना देखे, और कोई हमारा घूमना देखे, और कोई हमारी सेलिब्रेशंस देखे, और कोई हमारा शॉपिंग करना देखे। क्या आज हमारे दिल भारी नहीं है इन आयतों को पढ़ के? आज आप देखिए चारों तरफ इस्लाम हिट लिस्ट पे है, और हम गुस्से में और रिजेंटमेंट के साथ इन चीजों को लेकर चलते हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि कोई किसी पकड़ में ना आ जाए। आज के दौर में इस्लाम के लिए ना उठना एक जुर्म होगा, और अल्लाह ना करे कि हम इस जुर्म के मुर्तकिब हों। आगे कुछ इंसानी कमजोरियों का तذکرہ है। فرمایا لو کان ارضا قریبا او سفرا قاصدا لتبعوك، اے نبی اگر فائدہ آسانی سے حاصل ہونے والا ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے۔ یعنی مشکلات اور دوریوں نے ان کے قدم روک لیے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں نہ جا کر، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، یعنی ان کے یہ عذر سب جھوٹے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے آپ کو ایک لفظ نہیں اس پہ بولنے کی ضرورت۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر جھوٹے سچے عذر پیش کرتے تھے، اللہ کے نبی نے کیا کہنا تھا؟ وہ بھی ان کا کام تھوڑی تھا۔ آپ ہر ایک کی بات سنتے کہتے اچھا چلو جاؤ، اللہ معاف کرے، تم گھر رہ لو، چلو تم چلے جاؤ، تم نہ جاؤ، تم بیوی بچوں کو دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نبی کے اوپر بات لا رہے ہیں، اے نبی اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے ان کو کیوں رخصت دے دی؟ یعنی اتنی نرمی سے اجازت نہیں دے دینی چاہیے گھر بیٹھنے کی، تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ یعنی تم نے اجازت دے کر ان کو ریلیکس کر دیا، تم اجازت نہ دیتے انہوں نے پھر بھی نہیں تھا جانا تبوک کے لیے۔ کتنی ڈرا دینے والی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آیتیں جو انسان کو جینے نہیں دیتی، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو واقعی ایک انسان کو پیچھے کر دیتا ہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ اس وقت ایک ایسی اگنورنس کا شکار ہے ہم مسلمان، کہ اگر واللہ ہی آج کے دور میں بھی قرآن نازل ہو رہا ہوتا تو ایسی آیتیں نازل ہو چکی ہوتی۔ اللہ سچوں اور جھوٹوں کو الگ کرتا ہے ایسی مشکلات میں ڈال کر۔ فرمایا لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، जो लोग अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हैं वो तो कभी तुमसे ये दरख्वास्त ना करेंगे कि इन्हें अपनी जानो माल के साथ जिहाद करने से माफ रखा जाए। हाईलाइट कीजिए, ईमान की ताकत है, एडवर्स कंडीशंस में भी अल्लाह के दीन के तकाजों पे जमाई रखती है। का ये तो आके कोई माजरते नहीं पेश करते कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी घर हैं, हमारी भी चीज़ें हैं, ये तो चल रहे हैं क्योंकि इनका ईमान इनको चला रहा है। अल्लाह मुत्तकियों को खूब जानता है। ऐसी दरख्वास्तें यानी पीछे रहने की तो सिर्फ वही लोग करते हैं जो अल्लाह रोज़े आखिर पर ईमान नहीं रखते, जिनको अजर का यकीन नहीं है, या फिर दूसरी वजह कौन पीछे रहने वाले, जिनके दिलों में शक है और अपने शक ही में मुतरद्दित हो रहे हैं। दो बातें पता चली, दीन के तकाजों से दो किस्म के लोग पीछे होते हैं। एक, जिनको अजर की उम्मीद नहीं है, यकीन नहीं है कि वाकई ये भी कोई नेकी का काम है, इससे भी कोई खैर निकलेगी, या फिर दूसरी चीज़ शक है। हर एक के लिए एक मेयार है, खुद अपने आप को पूछे मैं क्यों पीछे हूँ। अगर वाकई इनका निकलने का इरादा होता तो इसके लिए कुछ तैयारी तो करते। देखिए, तैयारी करें तो रास्ते बन ही जाते हैं ना, कई चीज़ें नामुमकिन लगती हैं फिर अल्लाह आसान कर देता है। लेकिन अल्लाह को इनका उठना ही पसंद ना था, यानी अल्लाह ने तौफीक ही ना दी का तुम बैठे रहो, इसलिए इन्हें सुस्त कर दिया और कह दिया गया कि बैठ रहो बैठ रहने वालों के साथ। और नबी को तसल्ली दी जा रही है कि इनके बैठने पे तुम दिल ना मैला करो, क्यों? अगर वो तुम्हारे साथ निकलते तो तुम्हारे अंदर खराबी के सिवा किसी और चीज का इजाफा ना करते, वो तुम्हारे दरमियान फितने परदाजी के लिए दौड़ धूप करते। यानी कुछ लोगों का ना आना ही बेहतर होता है, क्योंकि वो आकर भी दूसरों के दिलों में वसवसों के सांप डालते हैं। और तुम्हारे गिरोह का हाल यह है कि अभी इनमें से बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनकी बातें कान लगाकर सुनते हैं। अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। इससे पहले भी इन लोगों ने फितना अंगेजी की कोशिशें की और तुम्हें नाकाम करने के लिए हर तरह की तदबीरों का उलट फेर कर चुके हैं, यहाँ तक कि इनकी मर्जी के खिलाफ हक आ गया और अल्लाह का काम होकर रहा। यानी इनकी कोशिशें नाकाम हुई, अल्लाह ने अपना काम करा लिया। इनमें से कोई है जो कहता है मुझे रुख्सत दे दीजिए और मुझको फितने में ना डालिए, सुन रखो फितने ही में तो ये लोग पड़े हुए हैं और जहन्नुम ने इन काफिरों को घेर रखा है। यानी अपने पीछे रहने को बहाना देने के लिए आपसे इजाजत लेने आते थे। अल्लाह कहते हैं यहाँ फितना क्या है भला आपको पता? जानबूझ के दीन से पीछे रहना, जानबूझ के अल्लाह के रास्तों से पीछे रहना, ये तो एक अपनी जात में खुद बहुत बड़ा फितना है। और इनका हाल क्या? तुम्हारा भला होता है तो इन्हें रंज होता है, यानी अंदर से खुश नहीं है ये, तुम्हारे साथ नहीं है ये लोग, दीन के साथ इनकी वफादारियां सच्ची नहीं है। और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये मुंह फेर कर खुश खुश पलटते हैं और कहते जाते हैं कि अच्छा हुआ हमने पहले ही अपना मामला ठीक कर लिया, यानी कामयाबी तो होनी कोई नहीं थी, शुक्र है हमने अपने आप को इधर से उधर कर दिया। इनसे कहो हमें हरगिज कोई भलाई या बुराई नहीं पहुंचती मगर वो जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी। अल्लाह ही हमारा मौला है और अहले ईमान को इसी पर भरोसा करना चाहिए। देखिए, इन आयतों को पढ़ के ऐसे नहीं लग रहा कि अल्लाह ताला नाराज है, क्यों? आप सवाल कीजिए क्यों अल्लाह ताला इतने गुस्से की बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह समझिए। एक होता है आम हालात में दीन का काम करना और एक होता है इमरजेंसी हालात। आप में से किसी के बाप भाई बेटे अगर फौज में है ना, तुमको पता होगा आम हालात में फौजियों की ड्यूटियां लगी रहती हैं, उसकी बारी उधर उस सेक्टर में उधर उधर, बट जब खुदा ना खास्ता दुश्मन आ जाता है, जंग लगती है, तो वो छुट्टी वालों को भी बुला लिया जाता है, सबको ऑन कॉल रखा जाता है। ये है दरअसल इशू। आम हालात में दीन को जरूरत नहीं, पांच वक्त नमाज रोजा हज ज़कात इट्स ओके नो प्रॉब्लम, बट दुश्मन सर पे खड़ा है और आप आराम फरमा रहे हैं, तो ये तो फिर एक जुर्म बराए जुर्म है। तो वक्त और हालात की बात होती है, किस वक्त कब किसकी कितनी नेकी की जरूरत है, ये हिकमत है और ये मांगने की जरूरत है। खतरे के वक्त जो दीन के पास ना आए, याद रखिए वो दुश्मन से कुर्बत का सबूत दे रहा है। अब्दुल्ला बिन उबई 300 लोगों को लेकर अगर मैदान उहद से निकल गया तो जुर्म है, क्यों? कि उसने अपनी जान बचा ली, इस्लाम को खतरे में डाल दिया। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं इनसे कहो तुम हमारे मामले में जिस चीज के मुंतजिर हो वो इसके सिवा और क्या है कि दो भलाइयों में से एक भलाई है और हम तुम्हारे मामले में जिस चीज के मुंतजिर हैं वो ये है कि अल्लाह खुद तुमको सजा देता है या हमारे हाथों दिलवाता है। अच्छा, तो अब तुम भी इंतजार करो और हम भी मुंतजिर हैं। यानी मोमिन के दोनों हाथों में लड्डू हैं, कामयाब हो गया तो दुनिया में भी फायदा, आखरत का तो है, और यहां ना भी कामयाब हुआ तो आखरत का फायदा तो है, लेकिन तुम सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इनसे कहो तुम अपने माल ख्वाह राजी खुशी खर्च करो या बकराहत, बहरहाल वो कबूल ना किए जाएंगे। कुछ लोगों ने खुद पीछे रहकर सिर्फ माल देना चाहा, और वो भी सिर्फ इसलिए कि अगर माल भी ना दिया तो फिर तो अल्लाह के नबी कहेंगे कि ये तो पता नहीं मुनाफिक है, का तुम्हारे माल नहीं चाहिए। जब जान की जरूरत है तो माल को क्या करेंगे। तो इससे पता चलता है कि हर नेकी का एक मौका होता है। क्यों नहीं कबूल किए जाएंगे? क्योंकि तुम फासिक लोग हो। इनके दिए हुए माल कबूल ना होने की वजह इसके सिवा और कुछ नहीं कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफर किया। नमाज के लिए आते तो हैं मगर सुस्ती के मारे, और आगे खुदा में खर्च तो करते हैं मगर बेदिली से खर्च करते हैं। इनके मालो दौलत और इनकी कसरत औलाद को देख कर धोखा ना खाओ। अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीज़ों के जरिए से इनको दुनिया की जिंदगी में भी अजाब में मुब्तला कर दे, और ये जान भी दें तो इनकारे हक की हालत ही में दें। यानी अल्लाह कहते हैं इनकी सारी चीजें नाकाम नकारा। क्यों? आप देखिए कि नबी मौजूद है, नबी कह रहा है कि तुम मेरे साथ निकलोगे, कामयाबी होगी। कितने बदबخت है, घर के बाहर नहर बह रही थी और प्यास में मारे गए। कितने बदनसीब थे वो लोग जिनकी जिंदगी में ये नेकी का मौका आया और उन्होंने सिर्फ छोटी छोटी चीजों से उसको खो दिया। दोबारा तो तबुक नहीं आई। अल्लाह के नबी की जिंदगी की आखिरी जंग थी, इसके बाद नो मोर, नो एनी मोर, खत्म, दैट्स इट। हसरत करते थे वो लोग बाद में जिन्होंने ऐसे मौके पे सुस्ती दिखाई, पीछे रह गए। अब आगे सब उसी की झलकियां, बस तर्जमा पढ़ते जाएं और खामोशी से मुहासबा। किसका? अपना। किसी दूसरे को ना मैं सोचूं ना आप सोचें, लेकिन यहां ये बात तो पक्की है कि हर बंदे के अंदर की अदालत उसको जवाब देती है कि मेरा अमल क्या है। जिनका दिल अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा होता है वो अल्लाह के दीन के हर तकाजे पे चल पड़ते हैं। और याद रखिए, जहां भी नेकी का मौका आएगा तीन तरह के लोग होंगे, एक दिल से करने वाले, दूसरे ढीले ढाले, और तीसरे वो हैं जो दूसरों की भी हिम्मतें तोड़ते हैं। अल्लाह ताला हमें पहले ग्रोह में शामिल कर दे। वो अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं हम तुम ही में से हैं, यानी अमल में पीछे और बातों में आगे, हालांकि वो हरगिज तुम में से नहीं है। क्यों? क्योंकि मुश्किल में काम नहीं आए। असल में तो ऐसे लोग हैं जो तुमसे खौफजदा है। खौफ था इनको कि हाय अगर हम अल्लाह के रास्ते में निकले तो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। अगर वो कोई जाए पना पा लें या कोई खो या घुस बैठने की जगह तो भाग कर इसी में जा छुपे। यानी इनको अपनी जान बड़ी प्यारी है। ए नबी, इनमें से बास लोग सदकात की तकसीम में तुम पर एतराज करते हैं, अगर इस माल में से इनको कुछ दे दिया जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं, वरना ना दिया जाए तो बिगड़ने लगते हैं। क्या अच्छा होता कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ भी इन्हें दिया था इस पर वो राजी रहते और कहते अल्लाह हमारे लिए काफी है, वो अपने फजल से हमें और बहुत कुछ देगा और इसका रसूल भी हम पर इनायत फरमाएगा। हम अल्लाह ही की तरफ नजर जमाए हुए हैं। यहाँ आप देखिए कि नबी सल्लम पे एतराज करते थे। याद रखिए, जहां भी जंग दीन इस्लाम की बात होगी ना, वहां कुछ लोगों की नजरें माल पे होंगी, किधर गया, कहाँ आया, कितना हुआ, किधर गया। और एक मौका तो ऐसा है, इस आयत के पीछे पूरा वाक्या जो बयान नहीं कर पा रही इस वक्त, नबी सल्लम पे इल्जाम लगा दिया जालिमों ने, कहा अल्लाह के नबी ने ले लिया होगा, आपने रख लिया होगा। अल्लाह कहते हैं तुम नबी के ऊपर इतनी बड़ी बात कहते हो? हाल यह है कि तुम्हें फायदा मिले तो तुम खुश हो जाओ, तुम्हारा नुकसान हो तो तुम नाराज हो जाओ। अब अगली जो आयत है, आयत नंबर 60, ये ज़कात की मदूत है। किस किस पर ज़कात दी जा सकती है, किस को नहीं दी जा सकती, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। तो एक तो मैं चाहूंगी कि आप किताबु ज़कात में से वो चैप्टर जरूर सुनिए कि किस किस को ज़कात दी जाती है। यहां सिर्फ 9 कैटेगरीज हैं, आइए उसको देखते हैं। ये सदकात तो दरअसल फकीरों और मिसकीनों के लिए है, इसको तुम सभी जानते हैं, गरीब, नीडी, पुअर, हैंडी, जो बहुत बेचारे मिसकीन टाइप के लोग हैं। दूसरे, और उन लोगों के लिए जो सदकात के काम पर मामूर हो, यानी जब हुकूमत ऐसी कमेटियां बनाएगी वहां कुछ लोग काम करेंगे तो उनकी तनख्वाह उन्हीं पैसों में से दी जा सकती है। और तीसरी, इनके लिए जिनकी तालीफ कल्ब मतलूब हो, ऐसे नॉन मुस्लिम जो इस्लाम की तरफ माइल है, थोड़ा सा अगर उनको कुछ फायदा दिया जाए तो दिल खुल जाएंगे। फिर ये गर्दनों के छुड़ाने और कर्जदारों की मदद करने में, किसी का कर्जा अदा कर दें, हलाल जायज काम का कर्जा, मजबूरियों के कर्जे, ऐश के कर्जे नहीं, वरना तो बहुत सारे अपनी ज़कातें खुद को ही दे देंगे कि हम भी मकरूज हैं। और राह खुदा में और मुसाफिर नवाजी में इस्तेमाल करने के लिए, ऐसा मुसाफिर जो अपने मुल्क से दूर, अपनी जगह से दूर और खाना पानी ख़त्म हो गया, तो फिर उसको भी दे दिया जाएगा, उसके लिए भी ये चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये सब कुछ कर करा के अल्लाह सुबहाना तआला आगे क्या फरमाते हैं कि एक चीज़ जो इसमें आ गई है, ये फरीज़ा है अल्लाह की तरफ से, यानी ये फ़र्ज़ है। ये ना सोचो कि कर दिया तो ठीक है, ना किया तो ठीक है। और फरमाया अल्लाह सब कुछ जानने वाला और दाना बीना, सारी बातें क्लियर हैं, लेकिन एक चीज़ राहे खुदा, इस पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है उलमा के बीच में। फी सबीलिल्लाह भी ज़कात का माल दिया जा सकता है, ये क्या है? फी सबीलिल्लाह, सुबुल कहते हैं रस्सी को, वो रस्सी जो लोगों को अल्लाह से जोड़ दे, कौन सी है? आप देखिए कि जिहाद का मौका तो कभी आता है, वो तो बाद की बात है, तीर तलवार तो बाद में चलते हैं, पहले वो चीज़ें जो लोगों को अल्लाह से जोड़ती हैं। इसलिए इस पे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का इत्तफाक भी है, कुछ हद तक कुछ ने कहा कि इसमें बात दूसरी है, लेकिन अक्सर लोग फी सबीलिल्लाह में अल्लाह के दीन को फैलाने, नशरोइशात, दावा, लोगों तक ये चीज़ें आम करनी कि जिससे इल्म आम हो, जिससे दुनिया से कुफर और जहालत के अंधेरे ख़त्म हो, उसमें खर्च करने की बात करते हैं। आप और मैं देखें आज के हालात में आपके मेरे लिए कहाँ खर्च करना बेहतर है, हर एक वक्त और हालात को देखें। खुदा न खास्ता कहत पड़ जाता है तो भूखों को खाना खिलाएं, बेहतरीन खर्च होगा। कोई बहुत सफ़ेद पोश है, किसी मजबूरी में कर्जों में दब गया, उसका कर्ज अदा कराएं। लेकिन अगर आप अमूमी, यानी जिसको मैं एक अमूमी खर्चा कहती हूँ, और आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त 2 बिलियन मुसलमान हैं दुनिया में, अमीर तरीन शख्स मुसलमान है, सबसे अमीर मुल्क मुसलमानों का है। अगर सिर्फ मुसलमान अपनी ज़कात देने लग जाएं और दीन को फैलाने में लग जाएं, आज दुनिया के कोने कोने में कुरान पहुंच चुका होता। मौरितानिया या उसके इर्द गिर्द के किसी गाँव से एक शख्स था, तो उसके बारे में किस्सा था कि एक आलिम थे जो ये बात सुना रहे थे। वो कहते हैं कि मैं मस्जिद नबी में गया तो मेरी वहां मुलाकात एक ऐसे पसमानदा इलाके से आए हुए शख्स से हुई। कहने लगे, मैंने उसे पूछा कि तुम कुरान के हाफिज हो? तो उसने कहा कि हाँ। और उसको गुस्सा लगा, ऐसे कहते उसने मुझे घूरा, मतलब ये था कि ये कैसे मुमकिन है। और उसने अपनी जुबान में उसको कहा, सिर्फ मैं नहीं, हमारे शहर, हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा हाफिज कुरान है। कहते मैं बड़ा हैरान हूँ। मैंने कहा अच्छा, कैसे? फिर उस शख्स ने जो अपनी कहानी सुनाई, उसने कहा हम दुनिया के उस खित्ते में मौजूद हैं, ये जो आप सबके पास कुरान रखे इतने खूबसूरत, और हम शायद इसकी कदर पहचाने ना पहचाने। वो कहते हमारे मुल्क में कुरान नहीं है, जितने लोग हैं उनके लिए कुरान वहाँ पहुँचते ही नहीं, या इतनी गुर्बत है कि लोग कुरान खरीद नहीं सकते। कहा अच्छा, फिर तुम लोग कुरान हिफ्ज कैसे करते हो? कहने लगे कि हर रोज उस्ताद अपने स्कूल में आते हैं, वाइट बोर्ड पे वो आयतें अपने हाथ से लिखते हैं जो उस दिन का सबक है, और सारे स्टूडेंट्स उसको अपने हाथ से सफ़े पे लिखते हैं, अगले दिन याद करके आते हैं, वो सुनाते हैं, और उस्ताद अगली आयतें लिखता है और वो हम लोग याद करते हैं। और इसके बावजूद हमारे मुल्क का एक एक बच्चा हाफिज़े कुरान है। इससे पता क्या चला कि आज भी दुनिया में ऐसे मुसलमान मुल्क भी मौजूद है जहाँ कुरान तक नहीं है। कपड़े कितने, जूते कितने, ज्वेलरी कितनी, जेवर कितना, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कितना, 100-100 तोला संभाल के रखा हुआ, और ज़कात बचाने के लिए कहते हैं ये फलां के, ये फलां के नसाब से कम हो गया। अल्लाह कहता है मैं सब जानता और देखता हूँ, कौन मुसलमान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर रहा। एक होते आप क्या कर रहे हैं, ये तो है ही है, एक ये कि आप क्या कर सकते हैं और आप नहीं कर रहे, अल्लाह दोनों को देखता है।